आप सुन रहे हैं सुनो किताब।
हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। मेरा नाम अमन है और आज की इस ऑडियो में हम क्लास 7th साइंस का चैप्टर नंबर 9 जिसका नाम है सॉइल के आगे के टॉपिक्स को कंटिन्यू करेंगे। तो चलिए आप सभी अपनी साइंस की टेक्स्ट बुक निकालिए एंड ओपन करिए पेज नंबर 101। So here on page 101, we have to continue from the topic absorption of water by soil. तो बच्चों, जैसा कि हमने लास्ट ऑडियो में पढ़ा था, हमने पहले तो रिवाइज करा कि हमने क्या क्या इस चैप्टर में पढ़ा है, what is the importance of soil, soil के क्या क्या काम है, उसके क्या characteristics हैं, उसकी कितनी layers होती हैं। After that, हमने लास्ट ऑडियो में डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉइल्स के बारे में पढ़ा कि सॉइल कितनी टाइप्स की होती है। रिकॉल कीजिए, सॉइल आर ऑफ 3 टाइप्स, लोमी सॉइल, सैंडी सॉइल एंड क्लेई सॉइल। इसी के साथ हमने इन तीनों सॉइल्स के अलग अलग करेक्टरिस्टिक्स के बारे में बहुत ही अच्छे तरीके से डिस्कस करा था। आफ्टर डैट हमने ये भी पढ़ा कि सॉइल की क्या क्या प्रॉपर्टीज होती है, उसके क्या क्या डिफरेंट करेक्टरिस्टिक्स होती हैं। इसके बाद वी हैव रेड अबाउट परकुलेशन रेट ऑफ वाटर इन सॉइल, यानी सॉइल के अंदर पानी का परकुलेशन रेट कैसे कैलकुलेट करा जा सकता है। इससे रिलेटेड हमने एक फॉर्मूला भी पढ़ा था, डैट परकुलेशन रेट इज इक्वल्स टू अमाउंट ऑफ वाटर डिवाइडेड बाय परकुलेशन टाइम। इसके बाद वी हैव रेड अबाउट मॉइस्चर इन सॉइल, कि सॉइल के अंदर नमी प्रेजेंट होती है, मॉइस्चर प्रेजेंट होता है, और ये हमने एक एक्टिविटी के थ्रू बहुत ही अच्छे तरीके से समझा था। तो चलिए, आज का हमारा टॉपिक है एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर बाय सॉइल। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। डू ऑल द सॉइल्स एब्जॉर्ब वाटर टू द सेम एक्सटेंट, लेट अस फाइंड आउट। क्या सभी तरह के सॉइल्स सेम एक्सटेंट यानी बराबर मात्रा में पानी को एब्जॉर्ब करते हैं, पानी को रिटेन करते हैं। तो चलिए इसको एक एक्टिविटी के माध्यम से पढ़ते हैं। सो एक्टिविटी 9.6। टेक अ प्लास्टिक फनल, टेक अ फिल्टर पेपर और अ पीस ऑफ न्यूज़पेपर शीट, फोल्ड एंड प्लेस इट as shown in the figure, that is 9.7, weigh 50 gram of dry powdered soil and pour it into the funnel. Measure a certain amount of water in a measuring cylinder and pour it drop by drop on the soil. You can use a dropper for this purpose. Do not let all the water फॉल एट वन स्पॉट। आपने इस एक्टिविटी में क्या करना है, आपने एक प्लास्टिक फनल लेना है और उसी के साथ एक फिल्टर पेपर लेना है या फिर न्यूज़पेपर की आप शीट भी ले सकते हैं। इस न्यूज़पेपर की शीट को या फिर फिल्टर पेपर को आपने फोल्ड करना है, जैसा कि आप फिगर 9.7 में देख सकते हैं, फनल के अंदर शीट को फोल्ड करके प्लेस कर रखा है। फोल्ड करने के बाद आपने ड्राई पाउडर्ड सॉइल को वे करना है अबाउट 50 ग्राम, यानी 50 ग्राम सूखी फाइनली पाउडर्ड आपने मिट्टी लेनी है और मिट्टी लेने के बाद आपने उसको फनल के अंदर डाल देनी है। यू हैव टू पोर इट इनटू द फनल। मेजर अ सर्टेन अमाउंट ऑफ वाटर, उसके बाद आपने कुछ अमाउंट में पानी लेकर उसको मेजरिंग सिलेंडर में मेजर करना है कि कितना अमाउंट है, और मेजर करने के बाद ड्रॉप बाय ड्रॉप ड्रॉपर की मदद से आपने इसको फनल के अंदर पानी को डालते रहना है। उसके बाद आपने पानी को एकदम से नहीं डालना, आपने ड्रॉप बाय ड्रॉप वापर डालते रहना है। डू नॉट लेट ऑल द वाटर फॉल एट वन स्पॉट, यानी एक ही स्पॉट पर सारा पानी नहीं डालना। ड्रॉपर की मदद से जो सॉइल है वहां पर हर एक पोर्शन पे आपने ड्रॉप्स को वापस रिलीज करना है। Pour water all over the soil, keep pouring water till it starts dripping, यानी सारा पानी आप सॉइल के ऊपर डाल दो तब तक जब तक पानी ड्रिप होकर नीचे फनल से बीकर में ना गिरना स्टार्ट हो जाए। सब्ट्रैक्ट द अमाउंट ऑफ वाटर लेफ्ट इन द मेजरिंग सिलेंडर फ्रॉम द अमाउंट यू स्टार्टेड विथ, यानी जिस अमाउंट से आपने मेजरिंग सिलेंडर में पानी पोर करना स्टार्ट करा था उस अमाउंट को आप सब्ट्रैक्ट कर दो जितनी अमाउंट अभी आपके मेजरिंग सिलेंडर में प्रेजेंट है, और आपकी वो अमाउंट आपको मिल जाएगी जो कि आपने यूटिलाइज करी है ड्रॉपर की मदद से फनल के अंदर पोर करने के लिए। नाउ दिस इज द अमाउंट ऑफ वाटर रिटेन्ड बाय द सॉइल, यानी मिट्टी ने कितने अमाउंट में पानी को सोखा है, एब्जॉर्ब करा है, वो अमाउंट आपको मिल जाएगी। रिकॉर्ड योर रिजल्ट्स इन योर नोटबुक इन द फॉलोइंग मैनर। अब आपने इसको अपनी नोटबुक में नोट डाउन करना है। कैसे करना है? तो यहाँ बताया गया है वेट ऑफ सॉइल इक्वल्स टू 50 ग्राम, इनिशियल वॉल्यूम ऑफ वाटर इन द मेजरिंग सिलेंडर इक्वल्स टू UML, फाइनल वॉल्यूम ऑफ वाटर इन द मेजरिंग सिलेंडर इक्वल्स टू VML, वॉल्यूम ऑफ वाटर एब्जॉर्ब्ड बाय द सॉइल इज U-VML, weight of water absorbed by the soil is U-V gram, 1 ml of water has weight equal to 1 gram। तो इस तरीके से आप ये कर सकते हैं। Now percentage of water absorbed, और इसी की मदद से कितना पानी soil ने absorb करा आप उसकी percentage भी निकाल सकते हैं। That is U-V divided by 50 multiply by 100. Now this 50 is weight of soil. बच्चों, बेसिकली जो एक्टिविटी हमने परफॉर्म करी है इसके अंदर हमारा मेन मोटिव ये है, ये जानना कि हमने जो मिट्टी ली है वो कितनी अमाउंट में पानी को एब्जॉर्ब कर सकती है, पानी को रिटेन करती है। तो ये सभी बातें हमने इस एक्टिविटी में सीखी है, और इसी के साथ हम ये भी निकाल सकते हैं कितनी अमाउंट में पानी रिटेन हुआ सॉइल के अंदर और क्या परसेंटेज है ऑफ वाटर एब्जॉर्प्शन, विच यू कैन फाइंड अगेन बाय द फॉर्मूला U-V डिवाइडेड बाय 50 मल्टीप्लाई बाय 100। सो दिस वाज ऑल अबाउट दिस एक्टिविटी। रिपीट दिस एक्टिविटी विद डिफरेंट सॉइल सैंपल्स, वुड यू गेट द सेम रिजल्ट फॉर ऑल द सैंपल्स। आपने इस एक्टिविटी को अलग अलग सैंपल्स के साथ परफॉर्म करना है, क्या हर बार हर सैंपल के साथ आपको सेम रिजल्ट मिलेगा? डिस्कस द रिजल्ट्स विद योर फ्रेंड्स एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। फर्स्ट, विच सॉइल वुड हैव द हाईएस्ट परकोलेशन रेट। तो पहला क्वेश्चन आपका ये है कि किस सॉइल का सबसे ज्यादा परकोलेशन रेट होगा, यानी कौन सी सॉइल में जो पानी है वो सबसे ज्यादा अमाउंट में रिटेन कर सकता है, उसके अंदर पानी रह सकता है। उसके बाद विच सॉइल वुड हैव द लोएस्ट परकोलेशन रेट, यानी कौन सी सॉइल है जिसका परकोलेशन रेट कम है, विच मीन्स दैट सॉइल जो कम अमाउंट में वाटर को रिटेन करती है और बहुत ही ज्यादा टाइम लेती है पानी को एब्जॉर्ब करने में। थर्ड, Bojo heard from his neighbor that 8 to 10 days after the rain, the level of water in a pond or well rises. Which type of soil will allow water to reach a well faster and in greater amount? जो Bojo है, उसने ये सुना कि 8 से 10 दिन जब बारिश होती है, तो बारिश के 8 से 10 दिनों के बाद जो पॉन्ड्स या फिर रिवर्स होते हैं वहां पर पानी का स्तर बढ़ जाता है। तो ऐसा क्यों, ऐसी कौन सी सॉइल है जो ज्यादा जल्दी और ज्यादा हाई अमाउंट में वाटर को नीचे बीकर में पहुंचा देगी। नेक्स्ट, विच टाइप ऑफ सॉइल रिटेन्स द हाईएस्ट अमाउंट ऑफ वाटर एंड विच रिटेन्स द लीस्ट। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सी सॉइल हाईएस्ट अमाउंट में वाटर को एब्जॉर्ब करेगी और कौन सी सॉइल बहुत ही कम अमाउंट में वाटर को एब्जॉर्ब करेगी। नेक्स्ट, कैन यू सजेस्ट एनी मेथड टू लेट more rainwater percolate and reach the water underground? क्या आप कोई ऐसा मेथड सजेस्ट कर सकते हैं जिसकी मदद से जो बारिश का पानी है दैट इज रेन वाटर वो बहुत ही इजिली परकुलेट हो जाए और अंडरग्राउंड जाकर अंडरग्राउंड वाटर की तरह स्टोर हो जाए सो दीज आर ऑल द क्वेश्चंस विच यू हैव टू आंसर दीज ऑल आर योर होमवर्क तो चलिए दिस वॉज ऑल अबाउट द एक्टिविटी नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज सॉइल एंड क्रॉप्स डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉइल्स are found in different parts of India. In some part, there is clay soil. In some parts, there is loamy soil. While in some other parts, there is sandy soil. यानी हमारे भारत देश के अंदर अलग-अलग स्थानों पर, अलग-अलग जगह पर different types की soils पाई जाती है. जैसे कि किसी जगह पर क्लेई सॉइल ज्यादा मिलती है तो किसी जगह पर लोमी सॉइल पाई जाती है या फिर किसी दूसरी जगह पर सैंडी सॉइल मिलती है तो हमारे इंडिया में अलग पार्ट्स में डिफरेंट सॉइल्स मिलती है सॉइल इज अफेक्टेड बाय विंड रेनफॉल टेम्परेचर लाइट एंड ह्यूमिडिटी जो हमारी मिट्टी हमारी सॉइल होती है ये चार चीजों या फिर चार फैक्टर की वजह से इफेक्ट इसके ऊपर पड़ता है जो कि है पहला विंड सेकंड इज रेनफॉल थर्ड टेम्परेचर फोर्थ लाइट एंड ह्यूमिडिटी ये जो पांच फैक्टर्स है प्लीज आप इसे अंडरलाइन कर लीजिए दे आर वेरी इंपॉर्टेंट दैट सॉइल इज अफेक्टेड बाय विंड रेनफॉल टेम्परेचर लाइट एंड ह्यूमिडिटी These are some important climatic factors which affect the soil profile and bring changes in the soil structure. ये कुछ climatic factors हैं, यानी मौसम के कुछ ऐसे important factors हैं जो कि हमारी soil की profile में बदलाव लेके आते हैं. उसको अलग-अलग प्रकार से affect करते हैं और उनके अंदर changes लेके आते हैं, ताकि जो soil का structure है वो चेंज हो जाए द क्लाइमेटिक फैक्टर्स एज वेल एज द कंपोनेंट्स ऑफ सॉइल डिटरमाइन द वेरियस टाइप्स ऑफ वेजिटेशन एंड क्रॉप्स दैट माइट ग्रो इन एनी रीजन यानी जो अलग अलग मौसम के फैक्टर्स हैं विंड रेनफॉल ह्यूमिडिटी क्या है टेम्परेचर क्या है लाइट क्या है इसकी मदद से ही हमें ये पता लगता है कि सॉइल के कंपोनेंट्स क्या होंगे और वहां पर किस तरह की वेजिटेशन किस तरह की क्रॉप्स उगाई जाएंगी वहां का एग्रीकल्चरल प्रोसेस कैसा होगा सो दीस ऑल डिपेंड ऑन दीस क्लाइमेटिक फैक्टर्स दैट इज फाइव क्लाइमेटिक फैक्टर्स रेनफॉल टेम्परेचर लाइट एंड ह्यूमिडिटी और विंड इट एज वेल एज द कंपोनेंट्स ऑफ सॉइल Determine the various types of vegetation and crops. यानी इन factors के इलावा soil के क्या component है किन चीजों से मिलकर वहां की मिट्टी बनी हुई है उससे भी हम ये पता लगा सकते हैं कि किसी particular place पे क्या vegetation है क्या crops उगाई जा सकती है Clay and loamy soils are both suitable for growing cereals like wheat. And gram. अब जैसा कि यहाँ लिखा है कि जो हमारी clay soil होती है, loamy soil होती है, ये soil cereals जैसे कि wheat और gram की growth के लिए बहुत ही लाभदायक है. It is suitable for growing cereals like wheat and gram. तो please आप सभी से underline कर लीजिए. Such soils are good at retaining water. क्योंकि जो ऐसी soil है, वो ज़्यादा से ज़्यादा पानी को रिटेन कर सकती है और ऐसे सीरियल्स की ग्रोथ में ये हेल्प करती है फॉर पैडी सॉइल्स रिच इन क्ले एंड ऑर्गेनिक मैटर एंड हैविंग अ गुड कैपेसिटी टू रिटेन वाटर आर आइडियल इसी के साथ जो पैडी क्रॉप्स होती है इनके लिए क्लेई सॉइल जिसके अंदर ज्यादा अमाउंट में ऑर्गेनिक मैटर प्रेजेंट होता है और जिनकी वाटर रिटेनिंग कैपेसिटी भी बहुत अच्छी होती है। ऐसी सॉइल इनके लिए बहुत ही ज्यादा लाभदायक है, बेनिफिशियल है और आइडियल साबित होती है। तो यहाँ पे ये लिखा है कि पैडी जैसी जो क्रॉप्स है उसके लिए क्ले सॉइल इज बेनिफिशियल। फॉर लेंटिल्स दैट इज मसूर एंड अदर पल्सेस लूमी सॉइल्स विच ड्रेन वाटर इजिली आर रिक्वायर्ड। उसी तरीके से मसूर जैसे अलग अलग जो क्रॉप्स है इनके लिए लूमी सॉइल की आवश्यकता होती है। पल्सेस, मसूर या फिर इनको लेंटिल्स भी बोलते हैं, ये लूमी सॉइल में उगाई जाती है जहां पर पानी बहुत ही जल्दी रिटेन हो जाता है और ड्रेन भी हो जाता है जिसकी रिक्वायरमेंट होती है। तो इससे हमें ये पता लगता है कि अलग अलग सॉइल्स में अलग अलग तरह की क्रॉप्स या फिर एग्रीकल्चर का काम होता है। फॉर कॉटन सैंडी लोम और लोम विच ड्रेन वाटर इजिली एंड कैन होल्ड प्लेंटी ऑफ एयर आर मोर सूटेबल। और उसी के साथ जो कॉटन प्लांटेशन है यानी कॉटन को उगाना, उसके लिए सैंडी लोम या फिर खाली लूमी सॉइल भी बहुत ही ज्यादा लाभदायक होती है जो कि ज्यादा अमाउंट में पानी को ड्रेन करती है, उसको रिटेन करती है और बहुत ही हाई अमाउंट में एयर को होल्ड कर सकती है। तो ये कॉटन के लिए सूटेबल है। सो दिस वॉज द करैक्टर कि अलग अलग सॉइल में कौन कौन सी क्रॉप्स को हम उगा सकते हैं। अब पेज नंबर 102 पे अगर आप देखें, सबसे नीचे पेज के बॉटम पे एक ब्लू बॉक्स है। चलिए इस ब्लू बॉक्स को रीड करते हैं। ग्राम जी एंड किलोग्राम के जी आर एक्चुअली यूनिट्स ऑफ मास। अ मास ऑफ 1 ग्राम वेज 1 ग्राम वेट एंड अ मास ऑफ 1 किलोग्राम वेज 1 किलोग्राम वेट। हाउ एवर इन डेली लाइफ एंड इन कॉमर्स एंड इंडस्ट्री द डिस्टिंक्शन बिटवीन ग्राम एंड ग्राम वेट इज जनरली ओमिटेड। जैसा कि यहाँ बताया गया है कि ग्राम और किलोग्राम एक्चुअली वजन की अलग अलग यूनिट्स है जो कि वजन के बारे में बताती है। 1 ग्राम जो वे है वो 1 ग्राम वेट के बारे में बताती है एंड अ मास ऑफ 1 किलोग्राम यानी जो 1 किलो का मास है वो 1 किलोग्राम वेट के बारे में बताती है। हाउएवर इन डेली लाइफ एंड इन कॉमर्स एंड इंडस्ट्री द डिस्टिंक्शन बिटवीन ग्राम एंड ग्राम वेट इज जनरली ओमिटेड। यानी इंडस्ट्रीज में, अलग अलग कॉमर्स के एरियाज में या फिर डेली लाइफ में हम इन ग्राम एंड ग्राम वेट्स का यूटिलाइज करते हैं। हमारी डेली लाइफ में हम ये देखते हैं ग्राम में और किलोग्राम की हम बातें करते हैं। सो दिस वॉज ऑल अबाउट अ यूनिट्स ऑफ मास। नाउ आफ्टर दैट ऑन पेज नंबर 103 अगर आप यहाँ पर देखें तो एक केस स्टडी आपको दे रखी है। तो चलिए हम इस केस स्टडी को पढ़ते हैं। जॉन रशिदा एंड राधा वेंट टू लीलाधर दादा एंड संतोष मालवीय ऑफ सुहागपुर इन मध्य प्रदेश। जैसा कि यहाँ लिखा है, जॉन रशिदा एंड राधा नाम के 3 बच्चे हैं जो कि लीलाधर दादा के पास और संतोष मालवीय के पास जाते हैं जो कि मध्य प्रदेश के सुहागपुर नामक गांव में रहते हैं। लीलाधर दादा वॉज प्रिपेयरिंग द सॉइल टू मेक आइटम्स लाइक सुराही, मटकी, कल्ला, अर्दन फ्राइंग पैन एटसेट्रा। जो लीलाधर दादा थे वो उस टाइम पर मिट्टी की मदद से अलग अलग तरह के धातु यानी अलग अलग आइटम्स बना रहे थे, जैसे कि सुराही, मटकी, कल्ला। कल्ला को हम अर्दन फ्राइंग पैन भी बोलते हैं। इन सब चीजों को वो प्रिपेयर कर रहे थे मिट्टी की मदद से। द फॉलोइंग इज द कन्वर्जेशन दे ऑल हैड विद लीलाधर दादा। अब इनके बीच में जो भी बातचीत हुई उसको संक्षेप में यहाँ नीचे बता रखा है। वेयर वॉज द सॉइल ऑब्टेन्ड फ्रॉम, यानी इनमें से किसी एक बच्चे ने पहला क्वेश्चन अपना पूछा कि दादाजी ये सॉइल कहाँ से मिलती है, हमको ये सॉइल कहाँ से प्राप्त होती है। इसके आगे दादाजी ने आंसर दिया, दादा वी ब्रॉट द ब्लैक सॉइल फ्रॉम अ पीस ऑफ बैरन लैंड, यानी हम ये काली मिट्टी जिसकी मदद से अलग अलग आइटम्स को बनाते हैं, ये हम एक बंजर जमीन से उठाकर लेकर आते हैं, दैट इज बैरन लैंड। उसके बाद इस आंसर को सुनके दोबारा से एक बच्चे ने पूछा, हाउ इज द सॉइल प्रिपेयर्ड, कि दादाजी इस सॉइल को हम कैसे प्रिपेयर करते हैं, इस मिट्टी को जिसकी मदद से आप अलग अलग आइटम्स बना रहे हैं। तो दादाजी ने आंसर दिया, दादा ड्राई सॉइल विल बी प्लेस्ड इन अ लार्ज टैंक एंड वुड बी क्लीन्ड ऑफ पेबल्स एटसेट्रा, यानी जो सूखी मिट्टी हम बंजर जमीन से उठाकर लाते हैं, हम उसको बड़े बड़े टैंक्स में स्टोर करके रखते हैं और उसके बाद हम उसको साफ करते हैं ताकि उसके अंदर प्रेजेंट जो अलग अलग पेबल्स, छोटे छोटे पत्थर या फिर बड़े पत्थर है, हम उनको हटा दें और हमारी जो सॉइल, हमारी जो मिट्टी है वो एकदम क्लीन हो जाए। आफ्टर रिमूविंग दीज थिंग्स द सॉइल विल बी सॉफ्ट फॉर अराउंड 8 आवर्स, जब हम उसके अंदर से सारे के सारे पेबल्स पत्थरों को हटा देते हैं तो उसके बाद हम इसके अंदर पानी डालते हैं और 8 घंटे तक इस मिट्टी के अंदर पानी को सूखने देते हैं। दिस सॉइल वुड बी नीडेड आफ्टर मिक्सिंग हॉर्स डंग, और इसके बाद इस मिट्टी को गूंद दिया जाता है, जैसे हमारे घर में जो मदर्स आटा गूंदते हैं उसी तरीके से इस मिट्टी को भी गूंदा जाता है, दैट इज नीडेड आफ्टर मिक्सिंग हॉर्स डंग, और इसके अंदर हम घोड़े का डंग भी इसके अंदर हम मिलाते हैं, यानी घोड़े के वेस्ट प्रोडक्ट्स उसको इसके अंदर मिलाकर हम मिट्टी को अच्छे तरीके से नीड करते हैं। द नीडेड सॉइल वुड बी प्लेस्ड ऑन द व्हील एंड गिवन अप्रोप्रिएट शेप। अब ये मिट्टी को हमने गूंद लिया, मिट्टी को गूंदने के बाद हम इसको एक व्हील के ऊपर रखते हैं, एक चक्री के ऊपर रखने के बाद हम इसको चक्री को गोल गोल घुमाकर इस मिट्टी को अप्रोप्रिएट अपने मन पसंद की शेप में कन्वर्ट कर देते हैं। द फाइनल शेप इज गिवन विद हैंड्स, द आइटम्स आर कलर्ड आफ्टर 3 डेज ऑफ ड्राइंग। इस चक्री के ऊपर रखने के बाद हमने उसको अपनी मन पसंदीदार शेप दे दी, जो इसकी फाइनल शेप होती है, लास्ट शेप, वो हम अपने हाथों की मदद से देते हैं, जिससे वो अलग अलग आइटम्स बनकर हमारे सामने आती है, मटके, अलग अलग सुराहीस या फिर कल्लास, दीयेस, तो ये सब चीजें हैं। और इन्हीं चीजों को हम 3 दिन तक पहले सुखाते हैं, बनने के बाद 3 दिन इनको धूप में रखकर सुखाने के बाद इनको कलर किया जाता है, इनको रंगा जाता है। All the items are baked at high temperature after drying in the air. जब इसको हम एयर में सुखा देते हैं तो इन सभी आइटम्स को हम बहुत ही ज्यादा हाई टेम्परेचर पे बेक करते हैं, इनको पकाते हैं। अब ये आंसर सुनने के बाद उन बच्चों को ये समझ आ गया कि मिट्टी कहाँ से मिलती है, कैसे प्रिपेयर की जाती है और इनकी मदद से हम किस तरीके से हमारे अलग अलग आइटम्स को बनाते हैं। लेकिन फिर से एक बच्चे ने एक क्वेश्चन पूछा, व्हाई इज द हॉर्स डंग मिक्स्ड इन सॉइल, यानी इस मिट्टी के अंदर हॉर्स का डंग हम क्यों मिक्स करते हैं, इसका सिग्निफिकेंस क्या है, व्हाई इट इज इम्पोर्टेंट। नाउ दादाजी ने जवाब दिया, दादा बर्न्ड हॉर्स डंग हेल्प्स ओपन अप द पोर्स इन द सॉइल, यानी हमारी मिट्टी के अंदर जो छोटे छोटे पोर्स हैं, उनको ओपन करने के लिए जला हुआ हॉर्स डंग हेल्प करता है, उन छोटे छोटे पोर्स को ओपन कर देता है, सो दैट वाटर कुड परकुलेट आउट ऑफ द मटकास एंड सुराहीस, ताकि जो पानी है वो सुराहीस और मटकास के बाहर परकुलेट हो जाए। इवेपोरेट एंड cools the water inside. और percolate होने की वजह से अंदर का पानी evaporate होगा, cool down हो जाएगा. और जो हमारा अंदर मटके के अंदर या सुराही के अंदर जो भी पानी हमने रखा हुआ होगा वो ठंडा हो जाएगा. इसीलिए हमारे घर में जो मटके होते हैं उसके अंदर का पानी हमेशा ठंडा रहता है, क्योंकि पानी बाहर परकोलेट होता है, परकोलेट होने के बाद वो इवेपोरेट होता है और अंदर के पानी में ठंडक पहुंचाता है. यू नो सुहागपुरी सुराहीस एंड मटकास आर फेमस इन फार ऑफ प्लेसेस लाइक जबलपुर, नागपुर, प्रयागराज, अर्स्टवाइल अलाहाबाद एटसेट्रा. दादाजी ये भी कहते हैं कि आपको पता है कि सुहागपुरी में जो सुराहीस और मटकास बनती हैं वो इतने ज्यादा फेमस है कि उनके चर्चे दूर दूर तक होते हैं, जैसे कि जबलपुर, नागपुर, प्रयागराज. प्रयागराज माने अलाहाबाद के पास जितनी भी सिटीज, टाउन्स या फिर विलेजेस है वहां तक इन मटके और सुराहियों के बारे में चर्चा होती है. तो ये एक छोटी सी केस स्टडी थी जो कि दादाजी के बारे में थी जो सुहागपुर नामक विलेज में रहते हैं इन मध्य प्रदेश. इस केस स्टडी से हमें ये पता लगा कि किस तरीके से उन्हें सॉइल मिलती है, उस सॉइल को वो कैसे प्रिपेयर करते हैं, किस तरीके से वो अलग अलग आइटम्स को प्रिपेयर करते हैं, कलरिंग करते हैं एंड बेक करते हैं. आफ्टर डैट बेक करने के बाद इसके अंदर वो हॉर्स डंग क्यों मिलाते हैं, इसके पीछे का भी रीजन हमें मिल गया है. सो दिस वॉज ऑल अबाउट द केस स्टडी. नाउ ऑन पेज नंबर 104 आगे है, क्रॉप्स सच एज वीट आर ग्रोन इन द फाइन क्ले सॉइल्स बिकॉज दे आर रिच इन ह्यूमस एंड आर वेरी फर्टाइल. वो क्रॉप्स जैसे कि वीट, वीट का मतलब होता है गेहूं की जो खेती है वो हमेशा फाइन क्ले सॉइल्स के अंदर की जाती है, क्योंकि इसके अंदर ह्यूमस की क्वांटिटी बहुत ज्यादा है और उसी के साथ दिस इज वेरी फर्टाइल सॉइल, यानी ये बहुत ही ज्यादा उपजाऊ होती है. फाइंड फ्रॉम योर टीचर्स, पेरेंट्स एंड फार्मर्स द टाइप ऑफ सॉइल्स एंड क्रॉप्स ग्रोन इन योर एरिया. टीचर्स, पेरेंट्स या फिर किसान की मदद से आप ये पता लगाएं कि आपके आसपास कितने तरह की सॉइल्स प्रेजेंट है और उनके अंदर कौन कौन सी खेती करी जाती है. एंटर द डेटा इन द फॉलोइंग टेबल 9.2 और आप ये सारी इंफॉर्मेशन को टेबल 9.2 में फिल कर सकते हैं. जैसे कि टेबल 9.2 में टाइप ऑफ सॉइल इज क्ले, क्रॉप ग्रोन इज वीट, तो इस तरीके से फिल कर सकते हैं. विच काइंड ऑफ सॉइल वुड बी मोस्ट सुटेबल फॉर प्लांटिंग राइस, soil with a higher or lower rate of percolation. So this is again a question for your homework. Now there is a blue box that is soil erosion. Chaliye se padhte hain. The removal of land surface by water, wind or ice is known as erosion. Yani land surface ka jab removal ho jata hai pani ki wajah se, विंड की वजह से या आइस की वजह से, इसको बोला जाता है इरोजन. प्लांट रूट्स फिर्मली बाइंड द सॉइल, जो हमारे पौधों की, पेड़ों की जो जड़ें होती है, रूट्स होती है, वो मिट्टी को बाइंड करके रखती है एक जगह पर. इट बाइंड्स और सपोर्ट्स द सॉइल. इन द एब्सेंस ऑफ प्लांट्स सॉइल बिकम्स लूज. अगर प्लांट्स नहीं होंगे, ट्रीज नहीं होंगे, तो जो हमारी मिट्टी है वो लूज हो जाती है, खराब होने लग जाती है. सो इट कैन बी मूव्ड बाय विंड एंड फ्लोइंग वाटर, जिसकी वजह से अगर तेज हवाएं चलेंगी या पानी बहेगा उसकी वजह से जो हमारी मिट्टी है वो भी उसी के साथ ब्लो हो जाएगी, इरोज्ड हो जाएगी. इरोजन ऑफ सॉइल इज मोर सेवर इन एरियाज ऑफ लिटिल और नो सरफेस वेजिटेशन. इरोजन ऑफ सॉइल उस जगह पर बहुत ही ज्यादा होता है जहां पर वेजिटेशन बिल्कुल नहीं है. सरफेस वेजिटेशन यानी प्लांट्स, हर्ब्स, श्रब्स सच एज डेजर्ट और बेयर लैंड्स, जैसे कि डेजर्ट्स हो गए या फिर बेयर लैंड्स जो बंजर जमीन होती है, वहां पर भी सॉइल इरोजन बहुत ही इजीली होता है। सो कटिंग ऑफ ट्रीज एंड डिफोरेस्टेशन शुड बी प्रिवेंटेड एंड एफर्ट शुड बी मेड टू इंक्रीज द ग्रीन एरियाज। इसीलिए हमें ये कोशिश करनी चाहिए कि हम पेड़ों को कम से कम काटें, डिफोरेस्टेशन को हम फॉलो ना करें, उसको प्रिवेंट करें, और उसी के साथ हमारे एफर्ट्स होने चाहिए कि हम एरिया को ग्रीन बनाएं, ग्रीनरी फैलाएं। वी शुड प्लांट मोर एंड मोर ट्रीज टू रिड्यूस और टू प्रिवेंट सॉइल इरोजन। तो बच्चों, दिस वॉज अबाउट सॉइल इरोजन, और इसी के साथ आपका ये चैप्टर कंप्लीट होता है। आपने इस चैप्टर की अच्छे से रीडिंग करनी है, जिन पॉइंट्स को मैंने अंडरलाइन या मार्क करवाया है उनको अच्छे से लर्न और रिवाइज करना है। इसकी बैक एक्सरसाइज हम नेक्स्ट ऑडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।
सुनो किताब से सुनने के लिए आपका धन्यवाद।